जय श्री ओम नमः सिद्धेव्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। दिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नामाये स्तुति को उचारी है। धन धन तुम ही ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चरणान योग के विभिन्न अंगों के संदर्भ में अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके माध्यम से भीतराग भाव की प्रेरणा, उसका पोषण अथवा उसका परिचय कैसे मिलता है। मुख्यतया अपन ने अनुव्रत और महाव्रत के संदर्भ में ये बात समझने की कोशिश की है कि किस तरह से चरणान योग हमें वितराग भाव की ओर ले जाता है। और अंगों पर भी अपन विचार कर सकते हैं, गहराई से सोचना चाहिए। अन्य अनेक अंग हैं, संभव हुआ तो थोड़ी चर्चा कुछ और अंगों के संदर्भ में भी करेंगे। पहले अपन शिक्षाव्रत वाला जो प्रकरण है उसके आधार से थोड़ी चर्चा करते। देखिए, ये जो गुणव्रत हैं, इनका नाम गुणव्रत क्यों रखा? क्योंकि अणुव्रतों में जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के अंश प्रकट हो जाते हैं, उनको और अधिक रिफाइंड करने के लिए, उनमें और ज्यादा समझ लीजिए क्वालिटी डेवलप करने के लिए ये तीन प्रकार के गुणव्रत बताए हैं। जैसा कि अपन ने दिग्व्रत और देशव्रत में देखा कि बाहर जाने का जो कार्यक्रम है उसको सीमित करना, तो कब होगा सीमित? कि बाहर जाने की इच्छा ना हो। अब क्यों नहीं होती इच्छा? पहले तो बहुत भटकते रहते थे इधर उधर, और अकेले जाने से मतलब नहीं है। देखिए, भाषा क्रिया की होती है और जीव का परिणमन तो उसके परिणामों में होता है। तो बाहर नहीं जाते इसका अर्थ है जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब ये बात जैसे अपन व्रतों में समझ रहे हैं, व्रतों के संदर्भ में, वैसे ही लोक में भी ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती। जैसे कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत अधिक व्यस्त रहता है, अपनी दुकान पर बहुत अधिक व्यस्त रहता है, तो उसे कहीं तीर्थ यात्रा पे या शिविर में उधर उधर जाने का विकल्प ही नहीं आता। और उसके घर के दूसरे मेंबर जाते हैं तो वो भी ये कह रहा, हाँ तुम चले जाओ, मैं तो यही दुकान में ठीक हूँ, ये काम मैं संभाले लेता हूँ, आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए। और उसके समझ लो पत्नी है, वो परेशान रहती कि जे नहीं चलते तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को मौका नहीं मिलता। यानी लोक में भी यदि किसी एक विषय में कोई जीव अधिक रम जाए तो अन्य विषयों से उसका चित्त सहज ही हट जाता है, चाहे वो दुर्विषय वाले विषय हो, चाहे वो धंधे व्यापार के आजीविका के सामान्य विषय हो, कोई भी हो, तो जो जैसे कि आपने सुना होगा गुरुदेव जब दुकान पर बैठते थे तो उनका चित्त तो दुकान में उतना नहीं जमता था, तो कोई भी साधु आए तो वो तुरंत दौड़ पड़ते थे उनके साथ में रहना, उनके साथ में घूमना, जो भी उसका उनका समागम करना और दुकान पर बैठे बैठे भी शास्त्र पढ़ना, तो ये सब उनके नेचर में था। लेकिन उनके जो पार्टनर थे और उनके कजिन ब्रदर थे, बुआ के लड़के थे, उनको इसका बिल्कुल रस नहीं था, तो उन्हें तो वो उपाश्रय में जाने का भी विकल्प नहीं आ रहे। तो गुरुदेव उन्हें टोकते भी थे कि तुम क्या करते हो, ये कैसा जीवन है तुम्हारा, सुबह से शाम तक सिवाय दुकान 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 कमाई 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 है, कुछ ग्राहक नहीं है तो इधर का सामान उधर रखा, उधर का ठीक किया, उधर का ये ठीक किया, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है खाली बनिया क्या करे, ये कोठी की धान वो कोठी में डाले। तो ये विरक्ति सहज है, ये किसी एक विषय में अति आसक्ति होने पर अन्य विषयों से विरक्ति, ये नेचुरल है, ये समझ में आया, बहुत अधिक इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसी तरह से जिसको अपनी चैतन्य की साधना में समझ लो जिसका पुरुषार्थ जागृत हो गया, तो उसे फिर ये बाहर के आने जाने में भले वो शुभ काम के लिए भी जाना क्यों ना हो, बाहर के कार्यक्रमों में जहाँ हजारों आदमी एकत्रित हैं, आप शांति से अपने मंदिर में बैठ के मंद स्वरों में पूजन पढ़ें, व्यक्तिगत अपना स्वाध्याय करें, या गांव में 10-20 आदमी बैठ करके जो चर्चा करते हैं उसमें जो उपयुक्त की सूक्ष्मता लगेगी वो आपको हजारों की सभा में होने वाले भाषण में नहीं मिलेगी। उसमें शैली की मुख्यता आ जाती है, पर उदाहरण भी खोजने पड़ते हैं, बिना ही खोजे आ जाते हैं, भूतों जैसे चक्कर काटते रहते उदाहरण, जब हमारा नंबर लगाओ हमारा नंबर लगाओ, और पूरा पूरा प्रवचन उदाहरणों इन उदाहरणों में चला जाता है और मूल बात रह जाती। तो बिल्कुल नई भूमिका के लोग जो है जिन्हें धर्म सुनने की भी रुचि नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये बाह्य पूजा प्रभावना आदि के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं और उन्हें रस लग जाए ऐसा अवसर उनके लिए प्रदान करते। अब जिसने वर्षों से सुना है, ख्याल में आया, जिसे तत्वज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो स्वयं का घोलन करे, तो इसको समझ लो विशुद्धि का लाभ भी होगा, और ये बाहर की झंझट और खटपट और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और कन्फर्म है और वेटिंग में है, समझ में आया ना। और फिर बाहर जाने में आकुलता तो है ही, वो जो विकल्प खड़ा हुआ वहीं से आकुलता प्रारंभ हो गई। ये इसमें देवलाली को आप अपवाद रखना, ये बाहर मत समझना, ये घर समझ के ही रहना। भाई है, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं जैसा हम निवृत्ति लेके किसी एक स्थान पर रहना चाहते हैं, आप बताओ, तो पहले तो मैं प्रमाण दृष्टि से कथन करता हूँ कि आप सोनागिर रह आओ 8 दिन, जयपुर रह आओ, सोनगढ़ रह आओ, मंगलायतन में रह आओ, जहाँ जहाँ अपने केंद्र हैं वहाँ पे आप 8 दिन रहो, 15 दिन रहो, सब जगह सुविधा है, व्यवस्था है, और तत्व ज्ञान की धारा भी सब जगह बहती है, लेकिन देवलाली का स्वाद आपको निराला मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं देवलाली में रहता हूँ, बल्कि निराला है इसलिए मैं आया हूँ, समझ में आया ना। एक तो सबसे बड़ी देवलाली की विजय, देवलाली को प्रकृति ने वरदान प्रदान किया है, हैं? न आप ज्यादा गर्मी से परेशान होंगे, न आप ज्यादा सर्दी से परेशान होंगे, गांव जैसी शुद्ध हवा है, शहरों जैसी सुविधा है, और क्या चाहिए, बोलो पीछे चले जाओ तो गांव मिल जाएगा, अंगूर के खेत मिल जाएंगे, हैं? और इस साइड में चले जाओ तो आपको बढ़िया 4 लाइन रोड मिल जाएगी, अब क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? दूसरा जो नियमित कार्यक्रम है उसमें गुरुदेव के टेप के अलावा जो लाइव जो स्वाध्याय होता है वो उसका स्तर और उसकी धारा कोई अलग ही होती। ये यहाँ पे एक सूनापन दिखता है कि यहाँ विद्यालय नहीं चलता। बहुत कोशिश भी की, सोचा भी, कई लोगों को विकल्प भी आ गए यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए है, लेकिन ये एक अपेक्षा से ये यहाँ का प्लस पॉइंट भी है। अगर मान लीजिए 50 विद्यार्थी बैठे होते तो प्रवचन उन विद्यार्थियों के हिसाब से ही होता, फिर तो श्रोताओं के साथ अन्याय होता। तो मैं यहाँ की बात नहीं कहता, लेकिन जो बाहर बड़े बड़े हजारों लोग इकट्ठे होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं तो उनमें आप समझ लीजिए जिसको रस है अपने अंदर का उसको सहजी वृत्ति नहीं होती। ये नकल मत करना कि अणुवृत्ति ऐसा करते हैं, गुणवृत्ति ऐसा, अपने परिणामों को पहचानना। समझ में आया ना, पहले वृत्ति हो जाओ फिर इसमें आना है। और कषाय की मंदता में तो दुख की मंदता है ही है, दुख मंद कषाय मंद तो दुख मंद। अब देखिए शिक्षा व्रत का कॉन्सेप्ट क्या है। सामायिक व्रत, प्रसोदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, ये चार शिक्षा व्रत हैं। इनका नाम जैसा है शिक्षा व्रत, यानी ये मुनि होने की ट्रेनिंग लेने वाले व्रत हैं, ट्रेनिंग पीरियड है। क्या सोच के आचार्य ने ये नाम रखा है। और ये कौन सी प्रतिमा से प्रारंभ होते हैं? दर्शन व्रत सामायिक, दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा। तो सामायिक प्रतिमा वाले को सामायिक शिक्षा व्रत होते हैं। प्रसोद उपवास प्रतिमा तो उसमें भी ये आ गया। तो आगे आगे मतलब इन्हीं में और अधिक वृद्धि होती जाती है, स्तर उनका ऊंचा होता जाता है। और सामायिक में आप देखिए स्वरूप ही उसका नितराग भाव से ही परिभाषित किया है। सामायिक की परिभाषा क्रिया में जरूर बताएंगे कि आप सिर्फ बैठना चाहिए, आसन देख लेना चाहिए, फिर वो क्या बोलते हैं चारों तरफ सर्वोन्नति करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, फिर नमोकार मंत्र पढ़े, फिर स्वरूप का विचार करे करे। ये तो स्थूल आखिर कहें क्या उसको, तो स्थूल रूप से एक लाइन देते कि ऐसा करना चाहिए। ये असल में सामायिक क्या है? धरीवर समता भाव सदा सामायिक करिए, परर चतुष्टय माहि पाप तदि क्रोशद धरिए। एक एक लाइन में दोनों की परिभाषा आ रही। उर में समता भाव धारण करिए। देखो एक प्रैक्टिकल क्या होता है, अब रहता तो गृहस्थी में ही है। अभी तीसरी प्रतिमा है, समझ लो सामायिक की तीसरी प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य की नहीं है। समझ में आया ना, तो आजीव का भी है, भोगो भोग भी है, ये सब है ना। अभी खाली अनुव्रत लिया है, दूसरी प्रतिमा ली है, माने अनुव्रतों का आचरण है। तो राग द्वेष के कितने प्रसंग बनते समाज में, घर में, परिवार में, सब में राग द्वेष के प्रसंग बनते। बिजनेस है तो राग द्वेष है ही है, राग द्वेष से पैदा होता है, राग द्वेष को पैदा करता है। क्या बोला? ये जो व्यापार इत्यादि कार्य हैं, राग द्वेष के कारण ही जीव इन्हें इनमें जुड़ता है और इनके होने पर राग द्वेष होते। जरा अच्छा चमक गया, बिजनेस अच्छा मिल गया, मान लो भाव बढ़ गए, मुनाफा हो गया, तो राग में वृद्धि हो गई। कुछ डाउनफॉल हो गया तो शोक हो गया, तो द्वेष की प्रकृति है, ख्याल में आए ना। तो अब आप सामायिक करने बैठे हैं तो उस दिन भर में या पूर्व में भी जो राग द्वेष के प्रसंग बने हों उन प्रसंगों को याद करके तत्व ज्ञान का विचार करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का विचार करें। हेलो, घर में छोटे भाई बड़े भाई में बात विवाद हो गया, सास बहू में हो गया, देवरानी जी ठानी में हो गया, रहता तो घर में ही है ना, है? तो विचार करे कि समझ लो सामने वाले की गलती है, फिर भी अपने वो कुछ कह दिया। तो देखो सब संयोग वियोग तो हृदय के अनुसार होते हैं, उसने कहा भी है तो वे वचन तो खुद गलती है। ये समय सार किस दिन सामने आएगा? समय सार का ज्ञान सामायिक के समय खड़ा कीजिए, विचार कीजिए। परिणति में समता भाव होना ये तो आत्मा के आश्रय से जो वितरागी अंश है उसकी ओर संकेत है। लेकिन अगर परिणति में समता भाव मान लो निर्विकल दशा नहीं होती है, समता भाव नहीं होता है, तो समता भाव कैसे हो उस तत्व ज्ञान का चिंतन की। टोडरमल जी ने तो स्पष्ट निर्देश ही दिया है क्या कि मिथ्यात्व के कारण पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, मुख्यतया इसी कारण कषायें उत्पन्न होती हैं। और तत्वज्ञान के अभ्यास से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तो मुख्यतया कषायें भी उत्पन्न नहीं होती। तो जो भी समझ लीजिए अच्छे बुरे प्रसंग बने हों और अपने को कषाय का उद्रेक हुआ हो, धारा तो चलती रहती वासना निरंतर, लेकिन उपयोग में क्रोध का, मान का, लोभ का, माया का, खाने पीने में, भोजन इत्यादि में, वस्त्राभूषण में, समझ में आए ना, पांच इंद्रिय विषयों में जो कषाय का उद्रेक भाव हुआ हो तो उसका विचार करे, अरे मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कहाँ ये आश्रम में कीच में उलझ गया। आचार्य देव ने तो इसे मल कहा है, आचार्य तो इसे दुख का कारण कह रहे हैं, ये रागा की परिणाम ये मेरी पर्याय में होते हैं, तो ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। ये है सामायिक का अभ्यास, ख्याल में आए ना, ये सामायिक का अभ्यास है। तो तत्व ज्ञान का आप चिंतन करेंगे यदि अपन, तो फिर वो असली जो सामायिक है उसकी ओर जाने का चांस मिलेगा। समता भाव दरी और समता भाव वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो जितनी जितनी कषायों का अंश का अभाव होता है उतनी उतनी समता भाव प्रकट हो गया। जितना रागांश शेष है उतना विषमता है, जितने अंश में राग है उतने अंश में विषम, राग स्वयं विषम तत्व है, समझ में आया। और अनुभूति सहज आनंद की अनुभूति, अतिंद्रिय ज्ञान अतिंद्रिय आनंद, वो समता भाव पढ़ना तो कैसे आएगा? वो तत्व ज्ञान से आएगा। तो ये सामायिक प्रतिमा या सामायिक नाम का शिक्षा व्रत हमें एक प्रकार से आदेश देता है, हमें एक नियम में बांधता है कि दिन में तीन बार दो घड़ी बैठ करके अपने को तत्व चिंतन करके समता भाव का अभ्यास करना। ये तो ऐसा काम है मतलब जबरदस्ती उठा के वितराग भाव की ओर ढकेल रहा हो, ऐसा उपक्रम है ये बढ़िया। व्रति श्रावकों द्वारा प्रातः दोपहर साय कम से कम अंतर मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। तो जब तक व्रत नहीं है तो अभ्यास रूप में करता है, व्रत है तो फिर नियम रूप में करता है। करता है ये तो चरणानुयोग की भाषा है, समझ में आया। लेकिन उस समय जो तत्व ज्ञान की विशेष धारा परिणामों में बहे, तत्व ज्ञान का चिंतन, बारह भावना का चिंतन है, इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग तो दुनिया में होते ही रहते हैं, देह के प्रति ममता आदि छूटी नहीं है तो देह के स्वरूप का विचार करे। ये बारह भावना का मैटर तो इतना जबरदस्त है कि इसमें सब भरा, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों तत्व बारह भावना में बैठे। वो कहते ना सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, तो इनमें भेद ज्ञान का चिंतन भी है। प्रारंभ की छह भावनाओं में भेद ज्ञान परक चिंतन है और बाद की छह भावनाओं में वैराग्य का चिंतन। ये हमें सीधे वितराग भाव की ओर जाने का एक अवसर सामायिक में से प्राप्त होता है। प्रोषद उपवास व्रत कषाय विषय और आहार, मुझे तो ये देख के ही बड़ा आनंद आता है कि चरणानुयोग के एक एक अंग को जो परिभाषित किया है तो उसकी परिभाषा में ही वितराग भाव को पहले रखा। आहार का नंबर कौन सा आया प्रोषद उपवास में? तीसरा। और सबसे पहले कषाय और विषय, तो विषयों से चित्त हटाना, समझ में आना। कषाय कम करने का क्या उपाय है? विषयों से चित्त हटाइए। और ये उपदेश की भाषा है, ये नेगेटिव है। ये तो विषयों से चित्त हटाए तो लगाए कहाँ? अपने आत्मा में लगाए, अपने स्वभाव, अपना चैतन्य, अपना वस्तु स्वरूप। आज ही कहीं पढ़ा था मैंने, वो ज्ञान में समझ लो, ज्ञायक ज्ञान में ज्ञान की महिमा आती है, ज्ञायक की महिमा आती है तो ज्ञान स्वरूप की ओर ढलता है। जहाँ महिमा आएगी, जहाँ अधिकता भाषित होगी, जिसमें सुख भाषित होगा, ज्ञान सहज ही उस तरफ ढलेगा। योग में भी देखो, इंद्री के लाखों विषय अपने सामने रहते हैं, नेत्र इंद्री के, कर्ण इंद्री के, करोड़ों गाने हैं इंटरनेट पे, समझ लीजिए आपके मोबाइल में आपने हजारों भर रखे हैं। कौन सा सुनते आप? जो पसंद है वो यही लगा ले, समझ में आया ना? तो फिर विषयों में भी ऐसा होता है कि एक विषय में वो आसक्त है ज्यादा, तो बाकी के पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उनको देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। ऐसे हर चीज में, आप कपड़ों में देख लीजिए, है जो कपड़े पसंद है उन्हें आप बार बार पहनेंगे, जो जो जिनसे जी भर गया, वो आया था ना भवन में जी भर घूम चुका है, तो जिनसे जी भर गया तो वो पड़े हैं, देखेंगे कोई आएगा तो किसी को दे देंगे, अब उसमें मजा नहीं है, वो आजकल के फटते भी नहीं है, ये होती है। तो ये सब कषाय और विषय का त्याग होवे, जिस दिन उपवास होवे, वो प्रक्रिया तो उन्होंने बहुत व्यवस्थित बताई है, समझ लीजिए। एक दिन पहले धारणा, फिर उपवास, फिर पारणा। इसमें धारणा माने मन में संकल्प होना कि कल मैं भोजन नहीं करूंगा, तो उसका समझ लीजिए रस है, शरीर के प्रति ममत्व त्याग का जो परिणाम है उसका रस जो है उसको पहले से बनने लगा। फिर उस दिन एकासन किया, धारणा के दिन, समझ में आया? तो वैसे ही समझ लो आसक्ति उत्ति तो घटेगी। फिर दूसरे दिन समझ लो पूरा उपवास किया। और ये देखिए, ये मैंने एक बार उसमें पढ़ा था कि आनंद श्रावकाचार्य में, कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन श्रावक आरंभ परिग्रह के भी कोई काम नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि फोन पर, आज तो फुर्सत है, आज तो उपवास है, तो फोन पे लगे हुए हैं माल खरीदने में, माल बेचने में, या दुकान पर बेटर के लिए तुम लोग जाओ, मेरा तो उपवास है तो मैं तो फ्री हूँ आज। काय के लिए फ्री भैया? ये फ्री ने काय के लिए है? ये आत्म हित के लिए है कि विषय कषायों की वृद्धि के लिए। टोडल मन जी ने तो जो नकली उपवास होता है, खेचतान करके होता है, अज्ञान दशा में होता है, उसका इतना सुंदर चित्रण किया है कि मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन जिसका उपवास हो उस दिन उसको वो जरूर पढ़ना चाहिए। एक आसन हो तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। ये है, आपको मिलेगा अपना, जहाँ ये सम्यक चरित्र का अन्यथा स्वरूप है ना, 338 पेज है शायद, या 238 सातवें अध्याय में, उसके बाद ही है 239-40 पेज पर ऐसे लिखा है, कोई पापी उस दिन ताश खेलते हैं, जैसे तैसे टाइम पास करते हैं अथवा सो जाते हैं, समझ में आया ना? तो जो उद्देश्य है, हाँ, रोगी की भांति काल गंवाता है, क्योंकि नॉर्मली तो करते नहीं है, दिन में 6 दफे खाने की आदत पड़ी हुई है, अब वो किसी आग्रह से प्रेरित होकर किया उसने। एक बात चोरमल जी ने इतनी मार्मिक लिखी है, वो भी चरणान योग के संदर्भ में समझने लायक है, कि उन्हें कहा कि जैसे ब्रह्मचर्य है तो नीची प्रतिमा वाला अगर अंगीकार करे तो उसमें क्या दोष है? आप तो 6-7 प्रतिमा में बताते हैं, पहली प्रतिमा वाला करे, या आत्मार्थी अपन लोग बहुत से जो करते हैं, समझ में आए ना? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितना हो सके उतना अच्छा काम करो। भैया टोडरमल जी ने इतना सुंदर लॉजिक दिया है कि यदि वो काम निचली प्रतिमा में संभव होता तो आचार्य उसे नीची प्रतिमा में ही लिखते ना, पहली प्रतिमा ही ब्रह्मचर्य की रख देते ना, उसको 7वें नंबर पे क्यों रखा? तो इसका मतलब है कि उसके पहले आप इस देह से ममता घटाइए, आहार इत्यादि के प्रति ममता घटाइए, आहार में जो भोजन में जो रसों के प्रति आसक्ति है, स्वादिष्ट भोजन के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति को कम कीजिए, तब ब्रह्मचर्य सफल होगा। ख्याल में आए? और ब्रह्मचर्य मतलब भोगों का त्याग किया, तब उसके बाद में दुकानदारी का त्याग कीजिए। जब तक आप भोगों की वृत्ति से जुड़े हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमाएं भी फिर। ख्याल में आए? कितना अरे ग्यारह चश्मा भी इतना वैज्ञानिक और इतना व्यवस्थित है कि ये समझ में आ जाए तो एक जैन दर्शन के चरणानुयोग की पूरी प्रक्रिया का लॉजिक समझ में आ जाता है। ऐसा सुंदर प्रकरण है। तो निचली भूमिका में अगर ऊंची क्रिया करता है, इसका भी ये मतलब हुआ कोई आदमी की तनख्वाह 10,000-15,000 रुपए और आजकल 15,000 रुपए क्या होता है, समझ लो बिल्कुल मामूली तनख्वाह वाला आदमी, और अचानक कोई ऐसा माहौल बना, उन्होंने कहा ये मंदिर बनाना है और उसमें 5 प्रतिमाएं रखी जाएंगी और एक प्रतिमा में 5 लाख, एक प्रतिमा मेरी तरफ से, तेरी क्षमता तो देख भले आदमी, अरे दे देंगे, सुखा देंगे धीरे धीरे। मतलब उसके दान के भाव नहीं है, उसके भावुकता के परिणाम, और धर्म भावुकता में नहीं होता है। धर्म तो यथार्थ अनुभूति का नाम है। तो जैसे आप अपनी क्षमता के बाहर दान न करें, दान में भी नियम रखा है, दान में भी पहली चीज तो संपत्ति का दान नहीं होता, वो एक एक्सेप्शन केस है कि अब आप जा ही रहे हैं इस भाव से और अपार संपत्ति है, तो जिसका जो हिस्सा है पुत्रों का दे दिया, भाइयों का दे दिया, उनका दे दिया, आप टेंशन फ्री हो जाओ, और भी है मान लो एक्सेस है तो आपने किसी संस्था को दे दी, मंदिर को दे दी, लेकिन दान आय में से इनकम में से होता है और इनकम का भी परसेंटेज नक्की है, है? उस ज्यादा से ज्यादा आय का 25% दान, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनकम का 25%, मध्यम है समझ लो 16%, जघन्य है 10%, ऐसा है। तो ये कितना व्यवस्थित है, समझ में आया? नहीं तो सारा का सारा दे दिया भावुकता में आके, एक संस्था को दे दिया और फिर स्वयं पराधीन हो गए, ऐसा बहुत होता है। तो ये सब चीजों से बचने की ही बात होती। तो पुरुषोत्तम बात में कषाय का त्याग, त्याग का पहला कदम ये है कि अपने स्वरूप को कषाय से भिन्न जानना। तो उपदेश तो त्याग की भाषा में है, लेकिन वो होए कैसे संभव? वेद ज्ञान पूर्वक ही कषायों का त्याग हो सकता है, है? जो कषाय को अपना स्वरूप मानता है, अपने ज्ञायक भाव को रागादि भाव का कर्ता मानता है, अपने को रागादि का कर्ता स्वभाव दृष्टि से भी अनुभव करता है, तो जिसका जिसमें अपनापन है, जिसका जिसमें कर्तृत्व है, वो उसका त्याग कैसे करेगा? त्याग करने की तो पहली शर्त है कि उसको अपना नहीं, त्याग किस चीज कर दिया जाए? जो अपनी चीज है उसका त्याग होता है क्या? स्वभाव दृष्टि से बात करता लौकिक व्यवस्था में तो ऐसा है कि अपनी चीज का त्याग, यानी अपने धन का, समझ में आया ना, आपके स्वयं के द्वारा अर्जित या आपके स्वयं के अधिकार क्षेत्र की सीमा में जो धन है उसको देना, वो लौकिक परिभाषा है। लेकिन कोई अपने ज्ञान का, अपने चारित्र का, अपने श्रद्धान का, इनका तो दान नहीं करेगा, इनका तो त्याग नहीं करेगा ना। त्याग तो जो दुखदायक तत्व है आश्रय उनका होता है। वो दान और त्याग में बहुत अंतर डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया है। तो ये कषाय और विषय का त्याग, ये समझ लीजिए पुरुषोत्तम उपवास व्रत की कंडीशन है। और ये तभी संभव है कि जो चैतन्य रसिक होवे, चैतन्य का आलम्बन जिसके अभिप्राय में परिणति में प्रकट हुआ हो, उसके जीवन में विषय कषाय नहीं होते। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। नहीं होते माने जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत लिमिटेड, एक लिमिट के भीतर होते, अनंतानबंदी नहीं होते। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्वालंब छोड़कर, ये है उस दिन झाड़ू भी नहीं लगाए, कपड़ा भी नहीं धोए, समझ में आया ना? मतलब तो करे क्या थे? स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, तत्व चर्चा है, ध्यान है, जी आमनाय नाम का जो पाठ है ना, पाठ करना, गाथाओं का पाठ है, हैं, कल्पों का पाठ है, कितनी सारी सामग्री है, मूल गाथाएं प्राकृत की हैं, संस्कृत के कलश हैं, हिंदी के अनुवाद हैं, तो उन कम से कम उस दिन उस फ्री है तो इनका लाभ ले रहे हैं। तो इसमें उसके भेद बताए हैं, खैर वो तो एक क्रिया की अपेक्षा है, ये तीन प्रकार से किया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक और पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना वो उत्तम प्रोषद उपवास है। मध्यम में केवल पर्व के दिन उपवास करना वो मध्यम प्रोषद उपवास है, मतलब पिछले दिन बराबर दो टाइम जैसा उसका नियम है वैसा भोजन दे रहे। पर्व के दिन केवल एक आसन करना, इसको जघन्य प्रोषद उपवास में लिया है। तो इसमें किसी की होड़ करने की कोशिश नहीं करे, देखा देखी करने की कोशिश नहीं करे, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं करे। जहाँ होड़ की भावना हो, कंपटीशन हो गए, तो वहां तो तत्व ज्ञान ही नहीं है भाई साहब, समझ में आया? हद्रत कहाँ से होंगे? वहां तो दृष्टि आत्म हित की नहीं रही, पूरा समझ लो कुएं में ही भांग पड़ गई, ऐसा हो गया। कितना सुंदर विवेचन है, धर्म निश्चय धर्म तो आत्मा के आश्रय से, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, उसके सत्कारक आत्मा में ही है। व्यवहार धर्म भी जिसको कहते हैं, दया दान भक्ति पूजा इत्यादि, वो भी अपने आत्मा को तीव्र पापों से बचाने के लिए किया जाता है, वो भी अपने आत्म हित के लिए है। व्यवहार धर्म है, और उसमें कोई दूसरे मेरा नाम होए कि मेरी प्रसिद्धि होए कि उसका फिर मुझे समाज में लाभ मिले, उसका स्थान मिले, उदय प्रमाण प्रतिष्ठा होती है, वो तो होती है, वो अपने करने से नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो दृष्टि की है कि हमें उसके बदले में हम चाहते क्या। टोडरमल जी ने एक व्यवहारा भाती में एक वो पात्र खड़ा किया, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार वाला, ख्याल में आए ना? तो वो धर्म बुद्धि वाला है, ये उसकी गलती है ऐसा नहीं है। अब सुनना, हेडिंग का ध्यान लेना जरा, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार भाती, तो क्या मतलब है इसका? वो धर्म के बदले में केवल मुक्ति प्राप्त करने की कामना है, उसमें धर्म नहीं, मिथ्या दृष्टि का भी वर्णन है। केवल धर्म बुद्धि से धर्म धारण करता हुआ, मोक्षाभिलाषी होता हुआ धार्मिक क्रियाएं करता है, व्रत भी करे, तप भी करे, तो बाह्य क्रिया में धर्म माना, इसका नाम व्यवहार भास है। धर्म बुद्धि अलग चीज है, समझ में आया? क्योंकि उसके पहले कुल बुद्धि और आज्ञानुसारी और लौकिक प्रयोजन वाले, इन तीन का वर्णन वो कर चुके, तो उन तीन के विरुद्ध उन्होंने चौथे को धर्म बुद्धि वाला लिया कि ये धर्म को बेचना नहीं चाहता, ये धर्म के बदले में यश नहीं खाना चाहता, ये तो केवल इस धर्म से मुझे सुख होगा, इससे मेरे चार गति का भाव भ्रमण मिटेगा, इस भावना से वो धार्मिक कार्य करता है। तो ये तो होना चाहिए, ये गलती जो हो गई कि तत्व ज्ञान ही खोटा पड़ गया। क्या खोटा पड़ गया? ये आश्रयों में संबंध मान लिया, जल की क्रिया में धर्म मान लिया, अपने को जल की क्रिया का कर्ता मान लिया, और धर्म बुद्धि वाले की कषाय इतनी मंद हो जाती है कि वो मुनि भी बन जाता है और नौवें ग्रह भी चला जाता है, और जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वधे तिन माही विपर्यत्व वो कायम रहता है। कैसी उसमें आश्चर्य की बात है कि इतना आगे बढ़ गया कषाय की मंदता में। इससे ये सिद्ध होता है कि ये तो अनंत बार ऐसी मंद कषाय हुई है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। अगर वो हमें तत्वज्ञान और वितरागता की ओर नहीं ले जाती ये क्रियाएं, तो इससे तो क्या धर्म है? मंदता तीव्रता तो विषय कषायों में होती रहती, उससे धर्म का क्या संबंध है? और देखिए भोगो भोग परिमाण व्रत, ये भी अपने लौकिक जीवन के सुखी के लिए भी बहुत आवश्यक है। जितना आपके पास परिग्रह बाह्य परिग्रह भी जितना कम होगा उतने ही आप वो सुखी रहेंगे। कई लोग समझ लो ऐसे हमारे परिचित हैं, कभी यहाँ दिखते नहीं, यहाँ भी आते, एक बड़ा समझ लो उनका सेल्फ बड़ा घर था अमेरिका में, तो बहुत सफाई करनी पड़ती, उन्हें खुद ही करनी पड़ती, तो खुद करो चाहे नौकर से कराओ, बात तो एक ही हुई ना, कृत कार्य अनुमोदना है, अहमपना तो अपना बैठा है ना, नौकर का थोड़ी अहमपना, उसको तो रोजगार मिला बेचारे को है, तो उनको इसका बड़ा विकल्प रहता था कि यार ये बड़ा घर के कारण हमको आरंभ बहुत करना पड़ता है और उसमें हिंसा होती है, वहां तो घास काटना जरूरी है घर के काम नहीं, तो इसलिए वो बड़ा घर बेच करके जो फ्लैट होते अपार्टमेंट वहां छोटा घर इसलिए लिया, वो भोग परिमाण यार नया नया दो तीन कमरों में काम चल जाता है, ये चार चार कमरे हैं, फिर हॉल है, फिर ये है, फिर वो है, इतने की क्या जरूरत है ऐसा, लेकिन ये कब संभव है, कषाय मंद हो, और कषाय मंद वास्तविक कब सार्थक होती है, जब रागांश टूटे हैं, दो कषाय का अभाव हुआ, फिर दो कषाय के उदय में जो समझ लो आया, तो वो उसके निमित्त से ये सब होता है, अभी और फिर उसकी चिंता बनी रहे, उसके विकल्प खड़े रहे, उनको रखने की जो है आजकल देखो, जैसे यहाँ कहें वो ये पुस्तक जो बाहर सुबह रखी थी ना कि जिनको चाहिए वो ले जाए, तो बहुत से लोगों को विकल्प आता है घर में जगह ही नहीं है कहाँ रखें, तो शास्त्रों के लिए तो जगह नहीं है, उनका परिमाण करना समझ में आए ना, तो ये एक अलमारी है वो भरी रहती है, हमारे यहाँ सरस्वती भवन को बहुत से लोग लाके रख जाते, हम ही लोग बेच देते हैं, तो लेकिन अभी उस शास्त्रों वाला बहुत बढ़िया समझ लो वो अल्टरनेट जो है विकल्प वो निकल गया, जी रखे जादू का खजाना जी, और ये तो बहुत बड़ा है, छोटा सा आता है, सैकड़ों शास्त्र पूरे जितने भी प्रकाशित हैं विश्व में सारे आप उसमें संग्रह कर लो, ख्याल में आया ना, ये करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए, पेड़ कटने से बचना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में हूँ, हार्ड कॉपी का यूज कम हो गए, सॉफ्ट कॉपी का, हमारे यहाँ जो प्रोजेक्टर लगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब समझ लीजिए 150 लोग बैठे हैं और 150 किताबों के बजाय एक किताब से ही मेरे पास रखी है, मैं भी अपने सामने रख सकता हूँ, मेरी आदत में कम है वो तो बाकी सब उसका लाभ ले रहे हैं, तो इतनी मतलब देश में 100 मुख्य मंडल है, 100 जगह स्वाध्याय होता है, और सभी जगह अगर ये व्यवस्था हो जाए, ख्याल में आए ना, और हर जगह मान लीजिए एवरेज 100 आदमी पढ़ते हैं तो 10,000 कॉपी छापने से अपन बच जाएंगे, वो तो वो लाइन अलग है वो, लेकिन शास्त्रों में मर्यादा करना और जूतों का कोई हिसाब किताब नहीं है कितने रखे हैं हर है, वो पुराने पड़ गए कि वो फैशन बदल गई कि वस्त्रा भूषणों की फैशन बदल गई, तो कहाँ रुचि है तेरी, भोग परिमाण कब करेगा ये जीव, पहले तो भोगों में सुख नहीं है ऐसी बुद्धि हो गए तो भोगों को कम करने की बात आएगी, जहाँ सुख बुद्धि पड़ी है तो वहां उसकी शक्ति नहीं है इसलिए कम है, समझ में आया, रखने की जगह नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है, उतनी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए कम है, इसलिए कम नहीं है कि हमारी तृष्णा कम है, और जो धर्म होगा वो अकेले बाह्य परिग्रह में कमी से नहीं होगा, वो तृष्णा की कमी से होगा, और तृष्णा में कमी होगी तो ऑटोमेटिक बाहर में कमी होगी और वो उसके विकल्पों से बचेगा, आगे बस मान लो 2-3 गाड़ियां हैं आपने रख ली, एक बेटे की रखी है, एक खुद की यूज है और एक पुरानी पड़ी है वो निकालना है, लेकिन अब वो नहीं चलेगी तो और चल खराब हो जाएगी, इसलिए चलाना है कि कम से कम उसकी बैटरी तो चालू रहे, कम से जितना आप अनावश्यक परिग्रह जो है वो महादुख का कारण है, ये तो सब प्रत्यक्ष समझने की बातें हैं, प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी देखो पहले अनंत दंड आया था, उसमें तो बिना प्रयोजन के समझ लो ये फालतू के काम नहीं करना, हिंसा इत्यादि के भोगों के। अब यहाँ तो जो प्रयोजन भूत है, सीमित परिग्रह है, उसके भीतर भी कषाय कम करके भोग और भोग का परिमाण घटाना, ये भोगो भोग परिमाण व्रत है। तो किस कंडीशन में घटता है? कषाय कम करके। वो कषाय कम करना ये क्या है? ये भी भीतराशा की ओर ही बढ़ने की मतलब प्रेरणा है ना। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते। अतिथि सम विभाग, मुनि व्रति श्रावक और अवर्ती श्रावक, इन तीन प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि सम विभाग व्रत है। ये भी राग उतरे बिना रहता नहीं है, लोक में भी ऐसा होता है। मान लो कोई धर्मात्मा जीव नहीं है, ऐसी लौकिक वृत्ति वाला जीव है, अब उसका मित्र आए तो, और वो एक गिलास पानी भी घर में नहीं पीने की जरूरत नहीं है अभी, अरे यार हमारे घर में आए और कुछ भी नहीं लो, ऐसा कैसे चलेगा? क्योंकि वो ही एक माध्यम है कि उसके माध्यम से समझ लो रागी जीव है, वो अपने राग की पूर्ति करते, सामने वाले पर कृपा नहीं कर रहे हैं कि भूखे को भोजन कराए, वो तो हम अपने राग की पूर्ति करते हैं, चाहे उसके पेट का कुछ भी हो। वो कह रहा है, मना कर रहा है कि नहीं मुझे डायबिटीज है, हम बैठे ना तो एक मंत्र मार देंगे और तुम्हारी डायबिटीज हम ही ठीक करें। खुद को भी है डायबिटीज, वो कहेगा आप भी लो ना, नहीं 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 मेरे को तो डॉक्टर ने मना किया, मैं ही हूँ मरने के लिए। तो लौकिक प्रसंगों में भी हम अपने रिश्तेदारों से, अपने मेहमानों से, अपने इष्ट मित्रों से, जिनके साथ हमारा वैसा व्यवहार है, जिनके प्रति हमें राग है, तो खिलाने पिलाने का कैसा व्यवहार चलता है? तो शादी ब्याह में एक से एक बढ़िया चीजें बनाना है, शो के लिए ही सही, दिखावे के लिए ही सही, नाम के लिए, और फिर बहुत बड़ी बड़ी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, पार्टियां होती हैं, ये होता है, सब क्या है? ये सब भोगो भोग के ही साधन है, तो, है? लेकिन जो रत्नत्रय के साधक हैं, जो भेद ज्ञानी हैं, जो चैतन्य रसिक हैं, ऐसे जीव आ रहे हैं, और जो स्वयं चैतन्य रसिक है, उसको अगर उसे देख करके समझ लो अनुराग न उछले, तो वो रोक ही नहीं सकता, वो भाव इस भूमिका में रहता हुए बिना रहते ही नहीं। अरे ये भी एक सुमेल है, श्रावक को अतिथि समिवार व्रत होता है और मुनिराज को आहार का विकल्प होता है, तो दोनों का समझ लो मेल बैठ गया। कल्पना करो अगर मुनिराज भी अरंत के समान मानो जैसे आदिनाथ है, और मुनि बने तो एक महीने तक, छह महीने तक तो उन्हें विकल्प ही नहीं आया, समझ में आया ना, तो कैसे कोई आहार देगा? गांव में कोई महाराज आए, तीन दिन के लिए रुके, और उन्होंने कहा मेरा तो तीन दिन का उपवास है, पक्का करें श्रावक ये भगवान जी की, ये महाराज जी क्या किया आपने? हमारे यहाँ आपके चरण पड़े और हमारे घर में न पड़े, तो उसको राग तो आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वो राग अंधा नहीं होता है, उसमें विवेक साथ में रहता है, नौदा भक्ति पूर्वक उचित वस्तुओं का जो उनके रत्न त्रय में बाधक न हो उसमें साधक ही होवे, ऐसा आहार देना इत्यादि, ये सब क्रियाएं सहज संपन्न होती। नित्य सम्यक दर्शन पूर्वक, देखो ये चरणान योग में ये शर्त है व्रतों की, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त बारह व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रति श्रावक कहलाता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं। मंद कषाय में भले आप वैसा यथार्थ आचरण करें, लेकिन अभिप्राय में तो रति बनी हुई है ना, विरति तो शुरुआत तो अभिप्राय से होती है, वो अभिप्राय में सुखबुद्धि पड़ी है और बाहर में त्याग कर रहा है, तो खुद के साथ भी छल है भाई साहब। क्या अभिप्राय में सुखबुद्धि पड़ी है और बाहर में त्याग क्यों कर रहा है? क्रिया में धर्म माना तो उसने मिथ्यात्व ही पुष्ट किया। सुबह मैं भी बहुत चर्चा करता हूँ, देवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया एक परिस्थिति का चित्रण किया कि मिथ्यात्व की तीव्रता और कथाएं की मंदता चारित्र मोह की ख्याल में आए ना। जैसे अन्य मति में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, घर में नहीं रहते हैं, धंधा व्यापार नहीं करते, कोई किसी को ठगते हुए छेतरते हुए ऐसा नहीं है, बस प्रभु भजन में लीन है। कोई आश्रम बना के कुटिया में रहते हैं, पांच इंद्रिय के ऋषियों का भी यथा संभव जितना है भले निर्दस्त नहीं रहते, बहुत से वो कुंभ में आते हैं साधु नागा साधु रहते हैं में आए तो वो जो तत्व ज्ञान उनका खोटा है और कुगुरु गुरु की श्रद्धा है इसके कारण मिथ्यात्व तो तीव्र है लेकिन विषयों की मंदता है। समझ में आया ना, तो ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उससे क्या लाभ। इसलिए सर्व है सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि के साथ, ये तो भी रास्ता है आत्मशुद्धि, सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त वृतादि रूप भाव होते। आत्मज्ञान बिना जो वृतादि रूप शुभ भाव होते हैं वे सच्चे वृत नहीं है। अब इसमें लोगों को एक प्रश्न होता है, अब हमें समय दर्शन नहीं तो भी हम अगर व्रत ले लें तो नुकसान क्या है। भले आदमी होते ही नहीं है जब तक कह रहे हैं तो फिर नुकसान और फायदे का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो क्या करें, तो ऐसे अनाप तनाप भोगों में प्रवृत्ति करें। देखो भाई तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान के अभ्यास वाले को जो मर्यादित भोगों भोग की वृत्ति होती है वो होगी, अमर्यादित नहीं होगी। जो सामान्य सदाचरण है वैसा ही उसका जीवन होगा। क्रिया के आधार पर प्रश्न उठे कि ये करें कि नहीं करें, ये करने में क्या दोष है, तो पॉजिटिव बोलो ना कि हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, वेद ज्ञान का अभ्यास करें। बाकी सब ऑटोमेटिक समझ लो, आप सही ट्रेन में रिजर्वेशन कराओ, सही ट्रेन में बैठो तो ऑटोमेटिक मंजिल पे पहुंचोगे। और भी जैसा कि मैंने प्रारंभ में संकेत किया था कि ये दान में दया में भक्ति में व्रत में, व्रत की तो चर्चा की है, शील संयम इनकी भी चर्चा यथा संभव आई गई है। तो जितने भी आचरण के अंग हैं वो सब ज्ञानी को वितराग भाव की ओर प्रेरित करने वाले ही होते। हमें उसका यथार्थ रहस्य समझना चाहिए और वितराग भाव की या अंदर में जो रागांश मंद हुआ है उस संदर्भ में उसकी क्रियाओं को देखना चाहिए तो हमें उसकी सार्थकता और उसका औचित्य समझ में आएगा। अंतिम बात एक मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने उसमें पुस्तक में लिखा है क्रिया परिणाम और अभिप्राय में, दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से ही होता है और वही संभव है। परिणाम तो दिखते नहीं है, अपन अनुमान भी करें तो जरूरी नहीं है जो परिणाम अभी है वो वैसे ही बने रहेंगे, परिणामों में उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। तो दूसरों का सम्मान, दूसरों का बहुमान, साधनी वात्सल्य वो सब उसकी बाह्य आचरण के आधार पर ही होता है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। और अगर बाह्य आचरण है और हम ये तो जल की क्रिया है, ये तो जल की क्रिया है ऐसा कहकर उसका तिरस्कार करें तो ये कोई उचित मार्ग नहीं। लेकिन खुद कभी बाह्य आचरण मात्र में संतुष्ट नहीं होना, खुद का मूल्यांकन अपने अभिप्राय से करना और वो भी व्यवहार मार्ग है अभिप्राय से मूल्यांकन करना। वास्तव में तो जो 320 गाथा में जो विषय चल रहा है वो मैं हूँ उसका मूल्यांकन करना अपनी पर्याय में, ये श्रेयस्कर है। समय भी अपना हो गया, अब अपन सब इस विषय को और गहराई से समझेंगे। इस भावना से मैं अभी की बात पूरी करता Thank you.
करनी है।